अष्टपाहुर लेक्चर नंबर 16 ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम शुद्धात्मने नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सौवसाहूनं गौण नमुकारुं दिनवरसहस्रवड्डमानस दंथणमग्गम्बोच्छामि जहां कम्मं समासेन। यह कुंदकुंदाचार्य भगवान रचित जो अष्टपाहुड़ है उस अष्टपाहुड़ के गाथा नंबर 7 को हम देखते हुए पेज नंबर 101 पर हम आए हैं। देखो यहाँ बता रहे हैं सम्यक दृष्टि को कुदेव कुगुरु कुशास्त्र को वंदन करने का भाव नहीं होता। और हमें क्या लेना है, हम भले सम्यक दृष्टि नहीं हो तो हमें ऐसा भाव नहीं आए इसका ख्याल रखना है। देखो यहाँ उपदेश की बात चल रही है, उपदेश में तो कहेंगे कि ऐसा मत करो, तो फिर वहां द्रव्यानुयोग मत लगाना कि शुभ भाव का भी मैं करता नहीं हूँ अशुभ भाव का भी मैं करता नहीं हूँ, और आप काय को हमको बोल रहे हैं कि ये करो वो करो। तो जहां जो अपेक्षा से जो कथन है वह मेरे लिए भला है ये समझकर उसको अंगीकार करो क्या। तो यहाँ कह रहे कि ये तो सम्यक दृष्टि की ऐसी हालत है कि वो कुदेव कुगुरु कुशास्त्र को वंदन नहीं करते, वो सब भाव ही नहीं आता है। जैसे हमारे एक मित्र है वो कहते रात का भोजन करने का हमें विकल्प ही नहीं आता है क्या, यानी क्या कभी ऐसा सोचते ही नहीं। मैं आपसे पूछूंगा भाई, कभी आपके मन में ऐसा विचार आता है कि फला फला नॉन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में फला फला डिश बहुत बढ़िया है अपने को खाना खाने को जाना चाहिए, विकल्प ही नहीं आता है, सोचेंगे ही नहीं हम, क्योंकि एक दफे नक्की हो गया कि वो हमसे बिल्कुल हम उसका सेवन ही नहीं करूंगा, बस बात खत्म, तो वो विकल्प ही नहीं आएंगे ख्याल में। तो यहां कह रहे हैं लज्जावश, क्या कहा लज्जावश यानी अरे लोग क्या कहेंगे, शर्म के मारे कुदेव आदि को वंदन करे तो भी मिथ्या दृष्टि है। प्रथम प्रतीति करो, पहला श्रद्धांत तो करो कि कुदेव कुगुरु कुशास्त्र का आदर न करो। ज्ञानी को अपनी कमजोरी के कारण अशुभ राग आर्त और रौद्र ध्यान का अशुभ भाव तो आता है, किंतु कुदेव कुगुरु कुशास्त्र को मानने का अशुभ भाव नहीं आता, यह बात कड़क है। जैसे 10,000 की कीमत वाला 10 रत्ती का हीरा 10,000 निम्बोली यानी नीम का फल में नहीं मिलता, वैसे ही कुदेव कुगुरु कुशास्त्र निम्बोली के समान है, सच्चे देवगुरु शास्त्र हीरे के समान है, अतः उनकी यथार्थ कीमत होनी चाहिए। इसलिए सच्चे देव शास्त्र गुरु की प्रतीति करो, जिसको कलिकाल में कुदेव कुरु कुशास्त्र की वासना घट गई है वे धन्य है। अभी तो मुनि के लिए आहार पानी बनाते हैं और बोलते हैं कि मन शुद्ध वचन शुद्ध काय शुद्ध आहार जल शुद्ध है, किंतु वास्तव में ये पांचों अशुद्ध है। है नहीं लिखा हो अभी पांचों अशुद्ध, अभी कलिकाल संबंधी वासना बैठ गई है, जैसे कस्तूरी के पास पड़ी हुई बहियों के पन्ने पन्ने में कस्तूरी की गंध फैल जाती है, फैल जाती है, फैल फैल कर दे, वैसे ही जगत को कुदेव कुगुरु कुशास्त्र की श्रद्धा की कुवासना की गंध पर्याय पर्याय में बैठी हुई है। इस काल में ऐसी प्रवृत्ति है मोक्ष मार्ग, इस काल में ऐसी प्रवृत्ति विशेष है। ये कल परसों बात निकली थी ना, ये हुंडा वसर्पणी काल है, इसमें अन्य जीवों की वहां मतलब मान्यताओं को भी बहुत जोर चल रहा है। अतः यहाँ उसके निषेध रूप निरूपण किया है, उसको जानकर मिथ्यात्व का त्याग कर अपना कल्याण करो। पूर्व के पंडित भी यथार्थ बात करते थे, अभी तो शास्त्र के नाम से। हाँ सर, अच्छा इसमें है नहीं, ओ बरोबर बरोबर बरोबर, मैं नीचे आ गया। चलो 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 चलो, इस काल में ऐसी प्रवृत्ति विशेष है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक के छठवें अधिकार में कहा है कि कुदेव आदि का त्याग न करने से मिथ्यात्व भाव बहुत पुष्ट होता है, इस काल में इनकी प्रवृत्ति विशेष देखने में आती है, अतः यहाँ उनके निषेध रूप निरूपण किया है। उसको जानकर मिथ्यात्व का त्याग कर अपना कल्याण करो। पूर्व के पंडित भी यथार्थ बात करते थे, अभी तो शास्त्र के नाम से विपरीत प्ररूपना चलती है। सच्चे देव शास्त्र गुरु का भी पता नहीं है। सम्यक दृष्टि, कुदेव कुगुरु कुशास्त्र को नमस्कार रूप दोष नहीं लगाता, अतः उसके मिथ्यात्व संबंधी प्रकृति का आगामी बंध नहीं होता। ये कल बात हुई थी, मिथ्यात्व संबंधी प्रकृति यानी वो जो हमने 41 प्रकृतियां देखी थी, 16 और 25। इस प्रकार यह गाथा पूर्ण हुई। आप कहते हैं जो दर्शन भ्रष्ट है तथा ज्ञान चारित्र से भ्रष्ट है, वे स्वयं तो भ्रष्ट है ही, परंतु दूसरों को भी भ्रष्ट करते हैं, यह अनर्थ है। बोलो तो।
जे दंसने सुभट्ठा नाने भट्टाचारी भट्टाय ए दे भट्ट विभट्टा से संपिजनम विनाशन्ति। ये दर्शनेषु भ्रष्टा ज्ञाने भ्रष्टा चरित्र भ्रष्टाश्च एते भ्रष्टादपि भ्रष्टा शेषम् जपि जनम विनाशयन्ति। जो ज्ञान दर्शन भ्रष्ट है चारित्र से भी भ्रष्ट है, वे भ्रष्ट करते अन्य को, वे भ्रष्ट से भी भ्रष्ट है।
एक संस्कृत में दूसरी लाइन में लास्ट में जो लिखा है ना विनाशयंती, विनाशयंती चाहिए,
वी नहीं,
वी नहीं, वी चाहिए, वी संस्कृत में नहीं, वो हिंदी में विनाश करते हैं, कहते हैं। अर्थ देखते भी इसका, वैसे तो सरल है, हिंदी में तो पता चल ही गया होगा। जो पुरुष दर्शन में भ्रष्ट है यानी जितना जिन मत की श्रद्धा तो है ही नहीं है, तथा ज्ञान चारित्र में भी भ्रष्ट है, ये जो विपरीत ही कुछ जान रहा है, चारित्र का तो कोई अता पता ही नहीं है, वे पुरुष भ्रष्टों में भी विशेष भ्रष्ट है।
क्वालिटी बताइए,
यानी तीनों में ही से ही भ्रष्ट है, ना समय दर्शन, यानी ना दर्शन है, ज्ञान है, ना चारित्र है।
जैसे हम किसी व्यक्ति के बारे में कहते हैं ये दलिंदर में दलिंदर है, दलिंदर इटसेल्फ खोटा है और उसमें भी और खोटा है, वैसा यहाँ भ्रष्टों का बादशाह है, भ्रष्ट में भ्रष्ट है।
कई तो दर्शन सहित है किंतु ज्ञान चारित्र उनके नहीं है, ये अलग अलग। यहाँ तो तीनों से भ्रष्ट की बात की, तो उसमें से कोई क्या है, दर्शन सहित है किंतु ज्ञान चारित्र उनके नहीं है। आप कहेंगे ऐसा कैसे होता है, जिसको सम्यक दर्शन है उसको सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र तो है ही, वहाँ उसकी बात नहीं। सामान्य कथन जो है, जिनमत की तो श्रद्धा है, परंतु ज्ञान नहीं है और चारित्र भी नहीं है, तथा कई अंतरंग दर्शन से भ्रष्ट है, तथापि ज्ञान चारित्र का भली भांति पालन करते हैं। ये बाह्य की बात चल रही है, यानी उसके समय दर्शन प्रकट नहीं हुआ है, परंतु अभी हाँ आगम का सही अभ्यास कर रहे हैं, चारित्र यानी कोई सदाचार युक्त आचरण चल रहा है उनका। और जो दर्शन ज्ञान चारित्र इन तीनों से भ्रष्ट है, वे अत्यंत भ्रष्ट है, वे स्वयं तो भ्रष्ट है ही, परंतु शेष अर्थात अपने अतिरिक्त अन्य जनों को भी नष्ट करते, क्यों वैसा ही उपदेश देते हैं, और लोग समझते कि नहीं नहीं ये जो कर रहे हैं यही सच्चा मार्ग है, तो वो भी उनका अनुकरण करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं। भावार्थ, यहाँ सामान्य वचन है इसलिए ऐसा भी आशय सूचित करता है कि सत्यार्थ श्रद्धान ज्ञान चारित्र तो दूर ही रहा, यानी यहाँ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की बातें नहीं हो रही, सामान्य से जो बात हो रही है, जो अपने मत की श्रद्धा ज्ञान और आचरण से भी भ्रष्ट है वे तो निरर्गल स्वेच्छाचारी है, स्वच्छंदी है, यानी जैनी होकर भी वो जिन मत क्या है इसका भी पता नहीं है, उसका कोई ज्ञान नहीं है और कोई सदाचार रूप आचरण भी नहीं है, वे स्वयं भ्रष्ट है, उसी प्रकार अन्य लोगों को उपदेशादिक द्वारा भ्रष्ट करते हैं, क्योंकि जैसी अपनी मान्यता है वैसे ही अन्य को भी उपदेश देते हैं। कितने ऐसे भी कहने वाले, ये मोक्ष वेक्ष कुछ हम नहीं मानते, बस लोगों की सेवा करो या खूब पैसा कमाओ और आनंद से रहो, यही हमारा मोक्ष है। जैनी होकर ऐसा कहने वाले, पढ़े लिखे वो भी ऐसे नहीं कि कोई अनाड़ी है गंवार है, तो अपने ये मत भी वो अन्य को सुनाते रहते हैं। निरर्गल यानी स्वच्छंदी, हाँ निरर्गल स्वेच्छाचारी है, वे स्वयं भ्रष्ट है, उसी प्रकार अन्य लोगों को उपदेशादिक द्वारा भ्रष्ट करते हैं, तथा उनकी प्रवृत्ति, ये डबल तो प्रवृत्ति यानी उनका आचरण देखकर लोग स्वयमेव भ्रष्ट होते हैं, इसलिए ऐसे तीव्र कषाय निषिद्ध है, उनकी संगति करना भी उचित नहीं है। अब प्रवचन पढ़ेंगे, अब कहते हैं जो दर्शन से भ्रष्ट है ज्ञान चारित्र से भ्रष्ट है वह स्वयं तो भ्रष्ट है ही किंतु अन्य को भी भ्रष्ट करता है, फुल स्टॉप।
जो पुरुष आप पढ़ रहे हैं कि मैं
दर्शन से भ्रष्ट है वह निर्ग्रंथ मुद्रा और निर्ग्रंथ भाव सहित मुद्रा से भ्रष्ट है। क्या कहते हैं, जो दर्शन से भ्रष्ट है, जिन मत की भी जो श्रद्धा नहीं है, तो निर्ग्रंथ मुद्रा से और निर्ग्रंथ भाव सहित मुद्रा से भी भ्रष्ट है, अर्थात उसको यह पता नहीं है कि मुनि कैसे होते हैं, चारित्र का क्या स्वरूप है, अंतर में तीन कषाय का अभाव और बाहर में नग्न दिगंबर दशा है, वह मुनि मार्ग है, उस मुनि मार्ग से मोक्ष होता है, मोक्ष है। जिसको ऐसी प्रतीति नहीं वह दर्शन से भ्रष्ट है, यानी मुनि के स्वरूप का ही उसको पता नहीं है, तो उसको कहेंगे वो दर्शन से भ्रष्ट है, तथा सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से भी भ्रष्ट है। जिसको आत्मा के पुण्य पाप से रहित निजानंद स्वरूप की प्रतीति नहीं है और मुनि का अभ्यंतर स्वरूप अर्थात तीन कषाय चोकरी के अभाव स्वरूप स्वरूप है उसकी खबर नहीं है, उसका ज्ञान और चारित्र भ्रष्ट है। जिसको पता नहीं उसका ज्ञान भ्रष्ट है, क्योंकि उसके मुनि के स्वरूप का ज्ञान नहीं है, और मुनि का चारित्र कैसे होता है ये उसको पता नहीं, इसलिए वो स्वयं ज्ञान और चारित्र से भ्रष्ट है कहा। इस प्रकार वह भ्रष्ट से भ्रष्ट है। जो दर्शन से भ्रष्ट है वह ज्ञान और चारित्र से भी भ्रष्ट है। जो दर्शन से भ्रष्ट है उसके व्यवहार ज्ञान और चारित्र का भी ठिकाना नहीं है, वह तो भ्रष्ट में भ्रष्ट है। व्यवहार ने उसको आगम के द्वारा कैसा देवगुरु शास्त्र का स्वरूप है, सात तत्वों का स्वरूप है, वो भी उसके पता नहीं है। किसी को आत्मा पुण्य पाप से रहित ऐसा भान तो है और जैन मार्ग व मुनि दशा की खबर भी है, किंतु समझाने की विशेष सामर्थ्य रूप ज्ञान नहीं, तथा मुनिपने की दशा रूप चारित्र नहीं है। स्वरूप में स्थिरता रूप अप्रमत्त दशा नहीं है, किंतु आत्मा विकार रहित है ऐसा भान है, और बाह्य में निर्ग्रंथ दशा और अंतर में निर्दोष ही मुनि दशा है ऐसी प्रतीति है, अर्थात मुनि दशा की प्रतीति है। सर्वज्ञ ने एक ही मार्ग कहा ऐसी श्रद्धा है, किंतु दूसरों को समझा सके ऐसा ज्ञान नहीं है और विशेष अंतरलीनता नहीं है। स्वरूपाचरण चारित्र है, यानी कौन सा गुणस्थान? चौथा। हाँ, वह धर्मी है, लाखों वर्षों तक मुनिपना न आवे ऐसे धर्मी जीव भी होते हैं। ये चौथा गुणस्थान चलता रहे लाखों वर्षों तक, क्योंकि 1 करोड़ पूर्व की अधिक आयु हो सकती है और वो सम्यक दृष्टि रहे, मुनिपना अंगीकार न करे। प्रश्न, सम्यक दर्शन होने पर भी चारित्र क्यों नहीं? लोगों का ये प्रश्न होता है ना, ये अपने को सम्यक दृष्टि मानते हैं तो मुनि दिशा क्यों नहीं अंगीकार करते? भाई, चारित्र बाहर से नहीं आता। कहने वाले कहते ना, इतना तो करके दिखाओ। जैसे वो बाह्य में कपड़े उतारने से चारित्र आ जाता है, तो कहते चारित्र बाहर से नहीं आता। चारित्र दशा स्वभाव के आश्रय से आती है। चारित्र जो दशा है, वो दशा यानी पर्याय किस द्रव्य की है? जीव की है। हाँ, तो वो जीव में होगी क्या, कपड़े में होगी? ख्याल में आता है ना कि शरीर में होगी। हाँ, वो बाह्य सुमेल होता है, ऐसा भी नहीं है कि अंतरंग में चारित्र हो गया और बाहर में कपड़े पहना रहे और मैं ये चारित्र हो, ऐसा भी नहीं है। परंतु वो दशा जो है, वो है तो जीव की दशा है। तो चारित्र दशा स्वभाव के आश्रय से आती है, स्वभाव में से आती है और स्वभाव के आश्रय से आती है। मुनिपना लेने का क्रम यह है, पहले तत्व ज्ञान हो, ये सबसे महत्व की बात है। बिना तत्व ज्ञान के बस ले लिया कोई मुनि दीक्षा, देखा देखी या कोई अज्ञानी को आवेश में आकर या दबान में लाकर दे दी किसी मुनि ने, तो ऐसे ये बात सही नहीं हो सकती। तो पहले तत्व ज्ञान हो, फिर उदासीन परिणाम हो, जिसे वैराग्य युक्त परिणाम हो उसके। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कहा है कि मुनिपद लेने का क्रम तो यह है कि पहले तत्व ज्ञान हो, फिर उदासीन परिणाम हो, परिशहादि सहन करने की शक्ति हो, और वह अपनी इच्छा से ही मुनि होना चाहता हो। क्या कहा? अपनी इच्छा से, कोई जबरदस्ती उसको देवे वो बात नहीं है। तब श्री गुरु मुनि भी जब दीक्षा देते ना, आचार्य की जवाबदारी है कि ये पात्र है कि नहीं दीक्षा लेने के लिए। वो बराबर पहले उसको, जिसको कहेंगे, परीक्षा करेंगे उसकी, वो तत्वज्ञानी है कि नहीं देखेंगे। वो विशिष्ट अभी का जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार उसकी कितनी सामर्थ्य है उसका भी विचार करेंगे। तब श्री गुरु से मुनिपना अंगीकार कराते हैं। किंतु यह कैसी विपरीतता है कि तत्वज्ञान रहित विषयासक्त जीवों को माया से अथवा लोभ बताकर मुनिपना देना। देते तो मुनि है, तो वो जो देने वाले उनकी क्या दशा होगी? क्योंकि जो अन्य जीवों को ऐसे मुनि बनाते हैं जो स्वयं विषयासक्त है और मायाचारी से या लोभ से, क्योंकि वो सुनकर उस आवेश में लेने वाले भी होते होंगे। ऐसे भी देखे जाते हैं कि बहुत गरीबी है, खाने को कुछ नहीं है, तो चलो मुनि हो जा तो एक टाइम का खाना तो रोज बराबर मिलेगा। ये अलग अलग ऐसे कोई प्रयोजन से वो मुनि दीक्षा लेते या दिलाते हैं, और फिर अन्यथा प्रवृत्ति कराना, किंतु यह तो महा अन्याय है। ये 6वें अधिकार में लिखा है, अपना यह बात यहाँ हुई थी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। हाँ, आगे बढ़ते। आत्मा राग से भिन्न है, पर से मुझे हानि लाभ नहीं है, ऐसा आत्मस्वरूप का भान न हो और मुनिपना लेना चाहता है, स्वर्ग पद मिलेगा ऐसा लालच दिया जाता है, यह कैसे विपरीतता है? स्वभाव के आश्रय से ही सम्यक दर्शन आदि होते हैं, सम्यक दर्शन किसी क्रियाकांड से नहीं होता। जिसको अजीव की क्रिया मुझसे नहीं होती ऐसा भान नहीं है, दर्शन का भान नहीं और क्रियाकांड में धर्म मानता है, वह जीव मूढ़ है। अजीव की क्रिया मुझसे नहीं होती यानी परद्रव्य की किसी की भी क्रिया मेरे से नहीं होती, प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, निमित्त से नहीं कार्य होता, ऐसा जिसको कोई तत्वज्ञान का ही अता पता नहीं है और कुछ क्रियाएं करना, व्रत पालना, इससे ही धर्म होता है मानते हैं, तो कहते वो जीव मूढ़ है। तथा कोई जीव ऐसे है जो दर्शन से भ्रष्ट है, निमित्त और राग की वासना पड़ी है, वास्तविक प्रतीति नहीं है परंतु बाहर से शास्त्र की बातें करते हैं, क्योंकि कुछ व्रत अंगीकार किए हैं तो लोग भी चाहते हैं हाँ इनका भी उपदेश सुनो, और वो शास्त्र में से कुछ शब्द सुनो, जैसे समय दर्शन है, ये समय ज्ञान है, ऐसे बातें तो वही की वही करेंगे परंतु उसका कोई आगा पीछा कुछ नहीं है, ऐसी बातें करते रहते हैं। तो कहते बाहर से शास्त्र की बातें करते हैं और 28 मूल गुणों का यथार्थ पालन करते हैं, व्यवहार आचरण का पालन करते हैं, किंतु वे भी मिथ्या दृष्टि है। ये यथार्थ पालन करने वालों की भी ये बात है, अभी तो यथार्थ पालन करने वाले भी क्वचित ही दिखेंगे। तथा जिसकी श्रद्धा विपरीत है, प्ररूपणा विरुद्ध है, प्ररूपणा यानी जो कथन है शास्त्र का, जो कथन कर रहे हैं वो शास्त्र में लिखा तो कुछ और है और ये अपने मति कल्पना से प्ररूपणा कुछ अन्य कर देते हैं, और चारित्र भी भ्रष्ट है, जो शरीर से तो नग्न दिगंबर रहे किंतु आचरण का ठिकाना न हो, प्ररूपणा का ठिकाना न हो, तो भी लोग बाह्य नग्नता देखकर ठगा जाते हैं, और ऐसा ही अब सर्वत्र हो रहा है। ऐसे भ्रष्ट मुनि को आहार शुद्ध कहकर प्रगाहन करते हैं, वे भ्रष्ट होते हैं। दर्शन से भ्रष्ट हुए ना, क्योंकि दर्शन ही कहते मुनि मुनि अवस्था को, और जो अंतर बाह्य मुनि अवस्था है वही सच्चे मुनि है। अब जो ऊपर का जिनकी श्रद्धा विपरीत है, प्ररूपणा झूठी कर रहे हैं और चारित्र का आता पता नहीं है, ऐसों को मुनि मानकर मुनिवत उनका आदर करना ये मिथ्यात्व है। जिस मुनि की श्रद्धा विपरीत, ज्ञान विपरीत और आचरण विपरीत, ऐसे तीनों में भ्रष्टता है, जो तत्व का विरोध करते हैं और उद्दिष्ट आहार लेते हैं वे भ्रष्ट है। उसे देखकर लोग भ्रष्ट होते हैं, जो मुनि के लिए उद्दिष्ट आहार बनाते हैं वे भ्रष्ट होते हैं। क्या बात, अहो जो वस्त्र सहित मुनिपना मनवाते हैं वे तो भ्रष्ट में भ्रष्ट है। श्रद्धा, ज्ञान और आचरण तीनों से ही भ्रष्ट है। जो उसके पास सुनने जाते हैं वो सुरस्व चाहिए, वे भ्रष्टता की पुष्टि करते हैं। सर्वज्ञ का मार्ग अथवा पंथ त्रिकाल में एक ही है, अन्य मार्ग में मुनिपना मानने वाले समय दर्शन ज्ञान चारित्र से भ्रष्ट है। उन्हें सत्य वस्तु स्वरूप का परिज्ञान नहीं है। जो वस्त्र पात्र सहित मुनिपना मानते अथवा मनवाते हैं वे रत्नत्रय से भ्रष्ट हैं। जो उनसे लाभ होना मानकर उनके पास सुनने जाते हैं वे भी भ्रष्ट में भ्रष्ट हैं। निर्ग्रंथ मुनि के अलावा अन्य को साधु माने और उसकी संगति करे, उसकी श्रद्धा भ्रष्ट होने से वह भ्रष्ट में भ्रष्ट है। यहाँ सामान्य कथन है, अतः ऐसा आशय भी सूचित होता है। भगवान द्वारा कथित सच्ची श्रद्धा, ज्ञान और आचरण तो दूर रहा। जो अपने माने हुए दिगंबर मत की श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र से भ्रष्ट है वह भ्रष्ट से भ्रष्ट है। आत्मा, आश्रव, बंध आदि तत्वों की जिसको खबर नहीं है, यानी जीवादि तत्वों की जिसको पता नहीं है, उनकी श्रद्धा नहीं है, उस अनुसार आचरण नहीं है, वह निरलगल स्वेच्छाचारी है। वे स्वेच्छा ही, स्वेच्छा श्वे ने स्वेच्छाचारी, स्व इच्छाचारी, कुंदकुंदाचार्य आदि निर्ग्रंथ मुनि सर्वज्ञ की परंपरा अनुसार क्या कहते हैं, इसकी जिसको खबर नहीं और जो यह मानता है कि पुण्य से धर्म होगा, बाह्य क्रिया से धर्म होगा, वह निरर्गल स्वेच्छाचारी है। फिर स्वे करना। पूज्यपाद स्वामी, कुंदकुंदाचार्य आदि महान दिगंबर संत धर्म के स्तंभ हैं, वे क्या कहते हैं? उसकी श्रद्धा नहीं, ज्ञान नहीं, वह स्वेच्छाचारी है। स्वयं पैसा इकट्ठा करके जैन शाला का फंड बनावे, यानी जो मुनि पैसा इकट्ठा करके कोई फंड बनाते हैं, ट्रस्ट बनाते हैं, उद्दिष्ट आहार ले, यह त्यागी के लिए शोभाजनक नहीं है। अभी तो पैसा वो बड़े बड़े तीर्थ बनवाते हैं, बड़ी बड़ी पहाड़ खरीद कर वहाँ हॉस्पिटल बनाते हैं, अन्य कोई चीजें, जिसको समाज सेवा के कुछ कार्य ऐसे कुछ करेंगे, ये मुनि के लिए शोभाजनक नहीं है, ये मुनि का स्वरूप ही नहीं है। मंदिर आदि बनाना हो तो बनते हैं, उससे त्यागी को क्या काम है? त्यागी होकर जो ये कार्य करते हैं वे निरर्गल स्वेच्छाचारी हैं। उनको कोई रोकने वाला नहीं है, वे स्वयं तो भ्रष्ट है ही, अन्य को भी ऐसा निरर्गल उपदेश देकर भ्रष्ट करते हैं। लोग तो मात्र उनकी बाह्य प्रवृत्ति को देखते हैं। पुण्य के कारण वाणी का योग हो और हजारों मनुष्य सुनने आते हो किंतु अंदर से भ्रष्ट होते हैं। नग्न दशा देखकर लोग भ्रमित हो जाते हैं। उनकी प्रवृत्ति देखकर लोग स्वयं अपनी उपादान गति योग्यता से भ्रष्ट होते हैं। क्या कहते हैं? उनके कारण भी नहीं, स्वयं उनकी अपनी उपादान योग्यता के कारण लोग भ्रष्ट होते हैं। अतः ऐसे भ्रष्ट जीवों की संगति नहीं करना चाहिए। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र निषिद्ध है। मिथ्या दर्शन ही तीव्र कषाय है। जिसके वह विद्यमान हो उसको साधुपने बहुमान देना, आहार पानी देना, उसको वंदन करना, उसकी संगति करना उचित नहीं है। यह बात किसी व्यक्ति के प्रति द्वेषवश नहीं, किंतु तेरी श्रद्धा की निर्मलता के लिए कही जा रही है। किसी की जवाबदारी किसी के ऊपर नहीं है। अपनी श्रद्धा में विपरीतता नहीं करना, यह अपनी भूल स्वयं सुधारेगा तो सुधरेगी, वो भी कोई दूसरा सुधारने वाला नहीं है। अतः मिथ्या दृष्टि की संगति नहीं करना चाहिए। वह भ्रष्ट जीव अपनी उच्चता बताने के लिए धर्मात्मा के दोष निकालता है। जो स्वयं तो समय दर्शन ज्ञान चारित्र से भ्रष्ट है, परंतु सच्चे धर्मात्माओं की भूल निकालकर उन्हें हीन बतलाता है। मैं साधु हूं, मेरे में कुछ है, इस प्रकार अपनी उच्चता बतलाता है, कुछ दोष निकालकर अपनी सत्ता जताता है। सच्चे पुरुष में दोष निकालता है वह बड़ा पापी है। अभी स्वामी जी के बारे में क्या है? समय दृष्टि होकर अन्य जो कोई समाज के जो अपने को बड़े मानने वाले, उनकी कोई दोष देखा कर, यानी खोटे झूठ मूठ का भी जिसका कहते हैं अपप्रचार चलता रहता था। अभी स्वामी जी को जाकर भी इतने दिन हो गए हैं, सालों बीत गए हैं। कितने साल हुए? 80 में गए ना, कितने 28 साल हो गए अभी। फिर भी अभी कांजी स्वामी के नाम से विरोध चलता है। ये तो उनकी प्रसिद्धि कर रहे हैं, विरोध नहीं है, अभी भी उस नाम से डर है उनके।
उनका देहावसान हो गया, फिर भी उनके ऊपर केस करते हैं कि वो दिगंबर नहीं है, और जीत जाते हैं।
ये मूर्खता नहीं तो और क्या है?
हाँ। वहां से कोई गए नहीं दलील करने को। अरे तुम उसको आदमी कहो या और कुछ कहो, वो है। यानी लोगों की मूर्खता का कोई प्रमाण है क्या?
इन्हें ऐसे मूर्खों के बस समझाने की भी जरूरत नहीं है, जो सूदने वो तो समझ जाते हैं।
कह रहे ना, सच्चे पुरुष में दोष निकालता है वह बड़ा पापी है।
जो कोई धर्मात्मा ज्ञानी भावलिंगी संत है, उनमें दोष निकालता है कि उन्हें व्याकरण नहीं आती, न्याय का ज्ञान नहीं है इत्यादि दोष निकालता है, वह अत्यधिक भ्रष्ट है। यानी कोई सच्चे मुनियों के बारे में भी ऐसा कहता है कि अरे वो उसमें ये नहीं है वो नहीं है ऐसी बात, तो वो तो कहते अत्यधिक भ्रष्ट है। अब गाथा 9। अब कहते हैं ऐसे भ्रष्ट पुरुष स्वयं भ्रष्ट है, वे धर्मात्मा पुरुषों को दोष लगाकर भ्रष्ट बतलाते हैं, करते है नहीं बतलाते हैं, यानी झूठा उनका जिसको कहते ना अपवाद करते हैं, बाहर में खोटा खोटी प्रसिद्धि करते हैं। जो को विधम सीलो संयम तव नियम जोग गुणधारी तस्स यदो सकहंता भग्गा भगतनम दिंती, यह कोपि धर्मशील संयम तपो नियम योग गुणधारी दोषान कथयंतः भग्ना भग्नत्वं ददति तपशील संयम व्रत नियम योग फिर भी उन्हें वे दोष दे जो स्वयं दर्शन भ्रष्ट हो। अर्थ देखते हैं, जो पुरुष धर्मशील अर्थात धम्मशीलों का है ना, अर्थात अपने स्वरूप रूप धर्म को साधने का जिसका स्वभाव है सम्यक दृष्टि जो है, यह तो मुनियों की बात चल रही है, तथा संयम अर्थात इंद्रिय मन का निग्रह, संयम लिए ना इंद्रिय संयम और प्राणी संयम, तो इंद्रिय और मन मिलकर 6 प्रकार हो गए, और षटकाय जीवों की रक्षा ये प्राणी संयम हुआ। तप अर्थात बाह्याभ्यंतर भेद की अपेक्षा 12 प्रकार के तप जो अभी अभी हम देख चुके हैं, 12 तप अंतरंग और बहिरंग। नियम अर्थात आवश्यकादि नित्य कर्म, मुनि योग के जो नियम होते हैं उनके जो आवश्यक होते हैं। योग अर्थात समाधि, ये योग यानी आत्मा से जुड़ना, वो योग ये कंपन रूप योग की बात नहीं है। समाधि यानी आत्मा रूप में स्थिरता, जिसके कारण इनको योगी कहते हैं, क्योंकि एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। यहाँ योग का अर्थ होता है समाधि। ध्यान तथा वर्षा काल आदि काल योग, यानी अन्य भी योग के अर्थ अलग अलग किए उन्होंने। योग गुण से गुण यानी समाधि है, ध्यान है, और जो आतापन योग कहते हैं, वर्षा योग कहते हैं, प्रतिमा योग कहते हैं, ये अलग अलग जो मुनियों के जो होते हैं उसको कहा योग। गुण अर्थात योग गुण से युक्त हो, गुण का अर्थ क्या, मूल गुण उत्तर गुण इनका धारण करने वाला है, उसे कई मतभ्रष्ट जीव दोषों का आरोपण करके कहते हैं। यानी यह इसे सच्चे भावलिंगी मुनिराज है, उनको कितने ही जीव क्या कहते हैं कि यह भ्रष्ट है दोष युक्त है, वे पापात्मा जीव स्वयं भ्रष्ट है, इसलिए अपने अभिमान की पुष्टि के लिए अन्य धर्मात्मा पुरुषों को भ्रष्टपना देते हैं। भावार्थ, पापियों का ऐसा ही स्वभाव होता है कि स्वयं पापी है, उसी प्रकार धर्मात्मा में दोष बतलाकर अपने समान बनाना चाहते हैं, ऐसे पापियों की संगति नहीं करना चाहिए। ये तो मुनियों के दोष बता रहे, पर हम लौकिक में भी देखते हैं कोई जो सज्जन होते हैं भले होते हैं तो वो गुणों से युक्त होकर भी अन्य जो पापी दुर्जन है तो खोटे आरोप लगाते हैं और उन्हीं के दोष बताते फिरते हैं। गाथा 9 पर प्रवचन। अभिमानी जीव अपने दोषों को तो देखता नहीं और धर्मात्माओं के दोष निकालता है, छल बल से यानी छल से और बल से उनका अनादर करता है, वह बड़ा पापी है। अपना स्वरूप चिदानंद शुद्ध स्वभाव है, उसमें पुण्य पाप रहित रमणता ही धर्मशील है। ये पर्याय की बात है, पहले तो स्वभाव जो है वो राग रहित है ही, राग द्वेष रहित है, शुद्ध चिदानंद है, और ये पर्याय की बात है कि पुण्य पाप रहित रमणता करना वो धर्मशील है। निमित्तक और राग को साधना वह धर्म नहीं है। मैं चिदानंद हूँ, मेरे में व्यवहार नहीं, ऐसी मान्यता स्वस्वरूप धर्म है। मैं व्यवहार मेरे में व्यवहार नहीं करते क्या है? मेरे में व्यवहार नहीं करते क्या? हाँ, शुभाशुभ राग भी नहीं है, मेरे में भेद भी नहीं है, वो भेद रूप व्यवहार वो भी मेरे में, क्योंकि मैं अभेद एक अखंड चिदानंद स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ। धर्म पर्याय है, स्वरूप की एकाग्रता वह धर्म है। धर्म की अवस्था नई प्रकट होती है, सादी है नहीं? धर्म प्रकट होना, जो अनादि नहीं था वो नया हुआ कार्य, तो उसको नई प्रकट होती है। चिदानंद स्वभाव के अवलंबन से नई अवस्था प्रकटे और अधर्म की पुरानी अवस्था नष्ट हो वह धर्म है। यानी नया उत्पाद हुआ, पुराने अधर्म रूप का व्यय हुआ और आत्मा तो चिदानंद तो वैसा का वैसा कायम रहा। धर्मात्मा अपने स्वरूप को साधता है तथा इंद्रिय और मन का निग्रह करके स्वस्वरूप में लीन रहता है, वह संयम है। यम यानी वो तो नियम जो अंगीकार किया है, और सम्यक रूप उसको कहते संयम। धर्मात्मा छकाय के जीवों की रक्षा करता है, यह तो निमित्त का कथन है। जो कोई ऐसा मानता है कि मैं किसी पर प्राणी की रक्षा कर सकता हूँ, वह मिथ्या दृष्टि है। इसलिए कहा यह तो निमित्त का कथन है, यानी उसके भाव आते हैं पर की रक्षा के, परंतु ऐसा नहीं मानता कि मेरे कारण इनकी रक्षा हुई है या मैं इनकी रक्षा कर सकता हूँ। मैं छकाय के प्राणियों की रक्षा कर सकता हूँ, ऐसा सम्यक दृष्टि नहीं मानता। छकाय में स्वयं भी आ जाता है। अपनी पर्याय में राग उत्पन्न न होने देना और स्वभाव में लीनता करना अपनी रक्षा है। ये वहां से अहिंसा शुरू होती है। क्या कहा? अपनी पर्याय में राग उत्पन्न होने न देना और स्वभाव में लीनता करना, वही अपनी रक्षा है, वही अहिंसा है। हमने पुरुषा सिद्धि उपाय की वो वचन पता है ना, आत्मा में मोह राग द्वेष की उत्पत्ति होना ही, राग की उत्पत्ति होना ही हिंसा है, और उसका अभाव ही, उत्पत्ति नहीं होना ही अहिंसा है। ऐसे जीव को तीव्र प्रमाद नहीं होता और शुभ राग आता है, वह व्यवहार दया है। दया धर्म का मूल जो कहा है, पहले में पहले अपनी जो दया है, स्वभाव में लीनता करना, वो तो अहिंसा है। और ऐसे जीव को जो शुभ राग रूप दया आती है, उसको कहा व्यवहार दया, तथा स्वभाव में राग रहित परिणाम निश्चय दया है। स्वभाव में लीनता जो है वो निश्चय दया है। आत्मा परजीव की रक्षा नहीं कर सकता, परंतु परजीव की रक्षा करता है।
ऐसा कहा जाता है।
हाँ, यानी आत्मा सच में तो इन रियलिटी में तो कोई किसी का रक्षा करता नहीं, परंतु उसने परजीव की रक्षा की या वो करता है, ऐसा कहा, यानी कथन होता है, और कथन है वही व्यवहार है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक के सातवें अधिकार में कहा है कि परजीवों की रक्षा के लिए यत्नाचार प्रवृत्ति को समिति मानता है। ये सातवें अधिकार में किसकी बात है आपको पता है? आपको याद है सातवें अधिकार में? प्रेरणा बेन आपको याद है?
सातवें अधिकार मोक्ष मार्ग प्रकाशक में वो किसके लिए लिखा गया है? हाँ जी, मुनियों के, आपके लिए नहीं। अरे
सातवें अधिकार का विषय क्या है ऐसा पूछ?
मैं बताता हूँ एक मिनट में। जो जीव जैन है, जिन आज्ञा को मानते हैं, फिर भी जिनमें अभी सूक्ष्म मिथ्या तो बाकी है,
यानी जैन मिथ्या दृष्टियों की बात है। चौथे अधिकार में अन्य मिथ्या दृष्टियों की बात की थी, ख्याल में आता है? तो यहाँ क्या कहते हैं, ये जो यत्नाचार, ये मुनियों के तो समिति होती है, पांच समिति होती है, तो क्या करते हैं मुनि, तो देख शोध कर उसका सब उनका आचरण चलता है। तो इसने क्या माना, परजीवों की रक्षा के लिए यत्नाचार प्रवृत्ति को समिति मानता है, परंतु हिंसा के परिणाम से तो पाप होता है, तथा रक्षा के परिणामों से संवर कहोगे तो पुण्य बंध का कारण कौन ठहरेगा। यानी जो यत्नाचार प्रवृत्ति वो तो पुण्य बंध है, वो तो पुण्य है, वो समिति नहीं है। ऐसे जो कि ये बाह्य में भाव आते हैं, परंतु सच्ची समिति तो अंतरंग में स्थिरता जो है, प्रतीति जो है, वहां तो वितरागता जो है उसको कहा है। और ये क्या मानता है, मात्र बाह्य में जो उसके यत्न पूर्वक आचरण है उसी को वो समिति मानता है। ऐशना समिति में दोष टालते हैं, वहां रक्षा का प्रयोजन नहीं है, अतः रक्षा के लिए ही समिति होती नहीं है। क्या कहते हैं, ऐशना समिति का अर्थ क्या है, आहार संबंधी जो अंतराय जो है, अन्य जो कोई है, हाँ, तो उसमें तो कोई यत्नाचार प्रवृत्ति की कोई बात ही नहीं, वहां कोई जीव रक्षा का परिणाम की बात नहीं है, तो समिति किसकी बना, तो किस प्रकार समिति होती है। मुनि को किंचित राग होने पर गमनादि क्रिया होती है, वहां उन क्रियाओं में अति आसक्तता के अभाव के कारण प्रमाद रूप प्रवृत्ति नहीं होती। क्यों नहीं होती, आसक्ति का अभाव है, तथा अन्य जीवों को दुखी करके अपना गमनादि प्रयोजन नहीं साधते, इस कारण स्वयं ही दया पलती है, इस प्रकार सच्ची समिति है। यानी उनकी सावधानी किसमें है, पर में नहीं अपने में है, और फिर भी कैसे है कि आसक्ति का अभाव है, इसलिए प्रमाद की प्रवृत्ति नहीं है, और प्रमाद के कारण प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा, ऐसा कहा है। ये इनके प्रमाद का अभाव है। आप कहेंगे प्रमत्त गुणस्थान में तो है ना, उस प्रमाद की बात नहीं है। हाँ, तो प्रमाद यानी जिसको कहते हैं असावधानी रूप, ऐसा उनके कोई प्रवृत्ति नहीं होती है, और दूसरों को दुखी करके अपने गमनादि का प्रयोजन नहीं करते। इसलिए वर्षा योग में भी एक जगह जो ठहरते हैं, दूसरों को दुखी करके गमन करना ऐसा उनका होता ही नहीं उनके प्रयोजन। तो दूसरों की दया सहज ही पलती है, वह उनकी समिति है। वरद्रव्य की पर्याय की रक्षा कौन कर सकता है, तू अपने शरीर की अवस्था नहीं कर सकता, अपने पुत्र पुत्री को बचा नहीं सकता, तो पर का क्या करेगा। ये जीव ने ये माना ही नहीं ना कभी, शरीर की अवस्था नहीं कर सकता, फिर भी उसके पीछे पागल की भांति दौड़ता है। प्रमाद भाव एटले शुभराग से बचाने का भाव आवे, शुभराग से प्रमाद से ने शुभराग से बचाने का भाव आवे, परंतु पर की रक्षा नहीं कर सकता। यानी मैं नहीं कर सकता तो मैं करूंगा ही नहीं, ऐसा हट भी नहीं है वहां पर। भूमिका जिस भूमिका में है वैसा राग आए बिना नहीं रहेगा। तो राग तो आता है, लाया नहीं जाता, ख्याल में आते है ना। परंतु मान्यता ऐसी नहीं कि वो मेरे कारण बच गया है। एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के जीव हिंसा हो ऐसा आहार मुनि नहीं लेते। जीवों की हिंसा हो या जीव हिंसा हो ऐसा आहार मुनि नहीं लेती, इससे मुनि छोकाय के जीवों की रक्षा करते हैं, ऐसा कहा है। जो ऐसे मुनियों में दोष निकालता है वह पापी है, तथा मुनि बाह्य अभ्यंतर 12 प्रकार का तप करते हैं और सच्चिदानंद प्रभु की अनुभूति में लीनता करते हैं, 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, आत्मभान सहित निर्दोष आहार लेते हैं तथा कषाय मंदता आदि धारण करते हैं, यानी उनके तो कषाय की मंदता ही चलती है, तो धारण करते कहना ये कथन है। जो ऐसे मुनि में दोष निकालता है और उन्हें नीचा दिखाकर स्वयं की महत्ता करता है, अर्थात ये मुनि तो सावध्य करते हैं, आरंभ करते हैं, ऐसा बोलता है, वह पापी है। मुनि को नवकोटि से त्याग है तो फिर मंदिर में जाने का विकल्प क्यों करते हैं, ऐसा कोई पूछे उनको, क्योंकि मुनिराज भी दर्शन आदि करते हैं, अरे यात्रा में भी जाएंगे, वंदनादि करेंगे, सवन करेंगे, तो क्या कहते हैं वो मुनि मंदिर में जाने का विकल्प क्यों करते हैं, मंदिर बनाकर ठीक किया ऐसा श्रावक को क्यों कहते हैं, इस प्रकार वहां दोष निकालता है। मुनिराज ने यदि कहा ये मंदिर बनाए, आपने अच्छी बात की, ठीक है, तो अन्य कोई उनके दोष निकालता है। तुम्हारे नवकोटि का त्याग है तो सावध्य को क्यों उत्प्रेरित करते हो? भाई मुनि को स्वरूप की दृष्टि है, वे निर्मल आचरण का पालन करते हैं और राग भूमिका अनुसार आता है। शास्त्र में कहा है अरिहंत सिद्ध तथा उनकी प्रतिमा चैत्यालय चतुर्विध संघ घ चाहिए तथा शास्त्र आदि सबके प्रति दास होते हैं तथा स्वामी का नौकर हो, उस प्रकार समकिति उनका दास है। मंदिर मंदिर के कारण से होता है, धर्मी को शुभराग आता है। पदमंदी पंचविंशतिका में कथन आता है कि मंदिर आदि बने तो वहां मुनिराज पधारे और धर्म की विशेष प्रभावना हो, परंतु वहां अज्ञानी दोष निकालता है कि मुनियों का सत्कार क्यों करते हो, भावलिंगी मुनि का बैंड बाजों से क्यों सत्कार करते हो, ऐसा कहकर दोष निकालता है। श्रावकों को सहज भाव आते हैं कि मुनि आए अपने गांव में, आए तो आंगन में आए तो उनका सत्कार करें, बहुत अलग अलग प्रभावना भी वो विशेष होती है, परंतु ये उनके भी दोष निकालता रहता है। वहां श्रावक अपने शुभ भाव करता है, परंतु अज्ञानी जीव धर्मात्मा के दोष निकालता है, स्वयं अभिमान करता है, मैं मुनि हूं, मैं बिना मूर्छा के वस्त्र रखता हूं, इसके क्या बाधा है। क्या कहते हैं अभी जो अन्यमति है, तो हमारे में कोई मूर्छा यानी मिथ्यात्व है नहीं, और फिर उसके मोह है नहीं, हाँ, और मैं उसके बिना ही वस्त्र रखता हूँ, इस प्रकार अपना बचाव करके दूसरों के दोष निकालता है। पापी का ऐसा ही स्वभाव है, स्वयं पापी है अथवा धर्मात्माओं में दोष निकालता है, इसलिए उसकी संगति नहीं करना चाहिए। सच्चे धर्मात्मा की पहचान करके खोटे की संगति छोड़ना ही हितकर है। देखो कुंदकुंदाचार्य ने प्रथम ही चाहिए ना,
प्रथम तो
प्रथम ही यह सिद्धांत बांधा है कि जिसकी बाह्य निर्ग्रंथ दशा हो, शरीर में निर्ग्रंथ वृत्ति दिखती हो, अंतर में अविकारी दशा हो, आत्म अनुभव सहित सात तत्वों और नौ पदार्थों की यथार्थ प्रतीति हो और अंतर बाह्य झलकती मुद्रा हो, वह जिन मुद्रा है और वही जिन धर्म है। वो प्रथम ही करना चाहिए था ऊपर। उन्हें अतीन्द्रिय आनंद की ही अभिलाषा है, वे जानते हैं पुण्य पाप के भाव दुख रूप है। जिसे अविकारी आनंद निर्ग्रंथ आनंद प्राप्त करना है, उसके चारित्र मुद्रा कैसी होती है उसकी बात चलती है। जो सग्रंथ को निर्ग्रंथ कहे वह जैन दर्शन नहीं है, ऐसा कहने वाला वीतरागी आनंद का इच्छुक नहीं है। चारित्र मुद्रा वीतरागी आनंद की साक्षात साधक है। चारित्र मुद्रा यानी अंतरंग तो चारित्र है, बाह्य में भी निर्ग्रंथ मुनि दशा जो है वो वीतरागी आनंद की साक्षात साधक है। बाह्य निर्ग्रंथ दशा है और अंतर में उपशम रस प्रकट हुआ है, उसे दर्शन मार्ग कहते हैं। यह दर्शन मार्ग श्रद्धा करने योग्य है, इससे विपरीत मार्ग श्रद्धा करने योग्य नहीं है। प्रथम जिनके वीतरागी दृष्टि, वीतरागी आनंद और वीतरागी झलक शरीर पर दिखे, उन्हें निर्ग्रंथ मुनि के रूप में स्वीकार करना योग्य है। उसके बदले वस्त्र सहित मुनिपना स्वीकार करने वाले को खेद की अभिलाषा है, वह आनंद का अभिलाषी नहीं है। अब जिस संप्रदाय से आए थे स्वामी जी, तो वहां जो देखा था उसकी झलक इसमें आती है क्या? वस्त्र सहित मुनिपना स्वीकार करने वाले को खेद की अभिलाषा है, क्योंकि उसको सच्चे मार्ग की अभिलाषा नहीं है, वह आनंद का अभिलाषी नहीं है। वीतरागी अर्थात अकषाय आनंद और स्वरूप आनंद की बात करते हैं। जीव राग की आकुलता वाला लौकिक आनंद तो अनादि से भोगता है, क्या कहते हैं? कैसा आनंद भोग रहा है अनादि से? राग की आकुलता वाला लौकिक आनंद, जिसको उसने सुख मान रखा है ही नहीं वो, तो वहां राग की आकुलता, राग की आग तो धधक रही है। अतः जिनकी मुद्रा में वीतरागी आनंद झलकता है, वीतरागी आनंद राग की आकुलता से रहित निराकुलता ही सुख है। छड़ाला में आते हैं, सुख क्या है? निराकुलता ही सुख है। ऐसा सुख कहाँ है तो मोक्ष में कहाँ। अतः जिनकी मुद्रा में वीतरागी आनंद झलकता है, उन्हें मुनि अथवा गुरु रूप में स्वीकार करना, जो इससे विरुद्ध है वह दर्शन से भ्रष्ट है। जिसकी मुद्रा निर्ग्रंथ नहीं है, उसे मुनि मानने, मनवाने अथवा अनुमोदन करने वाला दर्शन से भ्रष्ट है। जिनको चारित्र दशा होती है वे निर्ग्रंथ मुनि हैं, तथापि जो वस्त्र पात्र सहित को मुनि माने, मनावे और मुनि मानकर आहार पानी दे, वह मूढ़ मिथ्या दृष्टि है। जो दर्शन भ्रष्ट है वह मूल में भ्रष्ट है। जिसको मूल नहीं होता उसके फल नहीं होता। जैसे मूल यानी जड़ के बिना आम रूप फल नहीं मिलता, उसी प्रकार सम्यक दर्शन रूपी मूल के बिना केवल ज्ञान रूपी फल नहीं मिलता। अब 10 नंबर की गाथा देखते हैं। अब कहते हैं, जो दर्शन भ्रष्ट है वह मूल भ्रष्ट है, उसको फल की प्राप्ति नहीं होती। जह मूलम विनठे दुमस्स परिवारणति परवड्ढी तह जिन दंसन भट्ठा मूल विनठान सिचन्ति यथा मूले विनष्टे द्रुमस्य परिवारस्य नास्ति परिवृद्धि तथा दर्शन भ्रष्टा मूल विनष्टा न सिद्ध्यन्ति। ये सतरह द्रुम परिवार की वृद्धि न हो जड़ के बिना, बस उस तरह ना मुक्ति हो जिन मार्ग में दर्शन बिना। इस संस्कृत में जो पहली लाइन है, यथा मूले विनष्टे चाहिए, विनष्टे नहीं विनष्टे, और स्टे के ऊपर बिंदी नहीं चाहिए। ये द्रुम का अर्थ क्या होता है? हाँ सौभाग्यचंद जी, द्रुम शब्द है ना, द्रुम, द्रुम है क्या? मालूम नहीं। अच्छा अश्विन भाई आपको पता है? नहीं मालूम, यहाँ तो कॉमन सेंस से पता चलेगा।
आप बोलो।
हाँ हाँ, वृक्ष, वृक्ष, वृक्ष को कहते हैं द्रुम,
झाड़, झाड़।
तरु, तरु शब्द आता है, द्रुम आता है, द्रुम का अर्थ होता है वृक्ष, झाड़। क्या कहते हैं? जैसे मूल अगर विनष्ट हो गया, मूले विनष्टे द्रुमस्य परिवारस्य नास्य परिवृद्धि, यानी यहाँ मूल ही नहीं होगा, वहाँ वो वृक्ष और फिर उसकी शाखाएं, उसके फल फूल आदि, उसके परिवार का अर्थ क्या है? वृक्ष का परिवार क्या है? उसकी शाखा है, पत्ते है, फूल है, फल है आदि, तो वो कुछ भी नहीं हो सकता। वैसे ही जो जिन दर्शन से भ्रष्ट है वे कैसे? मूल विनष्ट है, यानी उनके मूल ही नहीं है, तो फिर वो बाकी उनकी सिद्धि नहीं होती, न सिद्धि है ना। सिद्धयंती लिखा है, मगर सिद्धयंती यानी सिद्धयंती चाहिए, सिद्ध शब्द चाहिए, सिद्धयंती। अभी अर्थ पढ़ेंगे। जिस प्रकार वृक्ष का मूल विनष्ट होने पर उसके परिवार अर्थात स्कंद, स्कंद ने उसके जो ट्रंक जिसको कहते हैं, शाखा, पत्र यानी पन्ने, पुष्प, फल की वृद्धि नहीं होती, उसी प्रकार जो जिन दर्शन से भ्रष्ट है, बाह्य में तो नग्न दिगंबर यथा जात रूप, ये यथा जात क्या होता है, उसका रूप क्या होता है, जात यानी जन्मा हुआ, जैसा जन्मा हुआ बालक है वैसा रूप, ऐसा निर्ग्रंथ लिंग, मूल गुण का धारण, 28 मूल गुण आदि का धारण, मयूर पिंची का, ये पिंची न नहीं लगता यहाँ पर, पी के ऊपर बिंदी लगाओ या वो यों करो चछ जझयो वाला यों, मोर पिंचिका की पिंची यानी मयूर पंख की पिंची, तथा कमंडल धारण करना, यथाविधि दोष टालकर खड़े खड़े शुद्ध आहार लेना, इत्यादि बाह्य शुद्ध वेश धारण करते हैं, तथा अंतरंग में जीवादि छह द्रव्य नव पदार्थ सात तत्वों का यथार्थ श्रद्धान एवं भेद विज्ञान से आत्मस्वरूप का अनुभवन, ऐसे दर्शन मत से बाह्य है वे मूल विनष्ट है। ये सच्चा स्वरूप कहाँ, और ऐसे से जो बाह्य है, इससे जो रहित है, वे कहेंगे मूल विनष्ट है। ऊपर लिखा ना, बाह्य में तो ऐसा ऐसा है और अंतरंग में जीवादि की श्रद्धा वगैरह है, आत्मस्वरूप का अनुभव, ऐसे दर्शन जो है, ऐसे मत जो है, इससे जो बाह्य है यानी जो ऐसे मुनिराज को नहीं मानते हैं, वे मूल विनष्ट है। यह मुनि क्या करते उसकी बात नहीं है, जिनके मत में जिनकी मान्यता में मुनि का ऐसा स्वरूप नहीं है वे मूल विनष्ट है, उनके सिद्धि नहीं होती, वे मोक्ष फल को प्राप्त नहीं करते। प्रवचन गाथा 8 में बात आई थी कि जिन मार्ग में भी जो मुनि होकर,
नहीं अभी 2-4 मिनट, गो अहेड,
व्यवहार से निश्चय मानता है और दोष युक्त आहार लेता है वह भ्रष्ट है, तथा श्वेतांबर आमनाय अनुसार भी उसका मुनिपना नहीं है और उनके शास्त्र अनुसार महाव्रत समिति आदि आचरण नहीं है, वह तो भ्रष्ट में भ्रष्ट है। जो उसकी संगति करता है उसे पाखंड का लाभ होता है, ऐसे को साधु मानकर वंदन करने वाला शास्त्र का शत्रु है। यही रुकते अभी हम, बाकी बात सोमवार को करेंगे। जावानी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत होड़ो।